ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत युवा नेता संवाद देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की अनूठी पहल है। श्री मोदी ने युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री रक्षा खडसे का राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 और विकसित भारत युवा नेता संवाद पर लिखा एक लेख साझा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं में ऊर्जा, रचनात्मकता और नेतृत्व को दिशा प्रदान करना है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। रेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया है कि 2047 तक भारत के भविष्य को आकार देने में बुनियादी ढांचे, उत्पादकता, कानून सुधार और समावेशी विकास में निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने गोखले इंस्टीट्यूट में आयोजित 2 दिवसीय पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल के समापन समारोह में ये बात कही। कार्यक्रम में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से श्री वैष्णव ने संबोधन में विकसित भारत के 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूरसंचार क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नए स्टेशनों के विकास के साथ साथ रेलवे सेवाओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन आज से देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना और प्रवासियों के अनुभवों का लाभ उठाना है। इसमें 17 देशों के प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवेश के अवसर, आतिथ्य और स्वास्थ्य, कौशल विकास, विदेशों में रोजगार, उच्च शिक्षा, बागवानी और जड़ी बूटियों की संभावनाओं पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को करावल नगर से, हरीश खुराना को मोतीनगर से और हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुई प्रियंका गौतम को कोंडली से टिकट दिया गया है। इससे पहले पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। कुल 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने अब तक 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई, ठाणे, पुलिस, पुणे और नागपुर के नगर निगम सहित स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी ताकत का आकलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन क्षेत्रों में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। श्री राउत ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलने से उनमें असंतोष फैलता है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नगर निगमों, जिला परिषदों और नगर पंचायतों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आज मुंबई में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और मुंबई सिटी के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल शाम गुवाहाटी में खेले गए एक मैच में मोहन बागान की टीम ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया। इससे पहले एक अन्य मैच में मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लब ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को 1-0 से पराजित किया। मिर्जा लोल कासिमोव ने विजयी गोल किया, जबकि मोहम्मदन क्लब के फ्लोरेंट ओगियर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। यह मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। पहले मैच में भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की थी। इसमें प्रतिका रावल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।